Namasitevya. Om Namasitevya. Om Namasitevya. Om Shuddhatmane Namaha. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Vajrayanam. Namo Loe Sauvasahunam. Nithaviyattakamam. Viramnamiyunapattasauvattam. Anubhagasavihattim Jahovai Samparuvemo. यह श्री बीरसेन आचार्य रचित जयधोला टीका है, जो कषाय पाहुड़ तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिशुभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। अब जो पांचवी पुस्तक आज से यहाँ शुरू करने जा रहे हैं, उसमें पृष्ठ संख्या एक पर हम आए हैं। अभी जो हमने मंगलाचरण गाया है, उसका अर्थ यहाँ दिया है, उसको पढ़ेंगे। नठव्य अठकम्मम, यानी जिन्होंने आठों कर्मों का नाश कर दिया है और समस्त अर्थों को प्राप्त कर लिया है। पत्त सौवट्ठम, अर्थ का अर्थ क्या है? समस्त अर्थों को प्राप्त पदार्थ, उसके द्रव्य गुण पर्याय सभी, तो उसको प्राप्त किया है का अर्थ उसको जान लिया है। उन श्री वीर देव को, जिन देव को नमस्कार करे, नमियूण वीरम, शास्त्रानुसार जहो वैसम, जहो वैसम जैसा उपदेश है भगवान का वैसा, यानी यथा उपदेश, क्या कहूंगा, अनुभाग विभक्ति को कहते हैं अनुभागस्य विहत्तिम परुवेमो। यहाँ हम अनुभाग की विभक्ति कहेंगे। दो नंबर पृष्ठ आगे है, यहाँ से सूत्रों का प्रारंभ होता है, हम यहाँ देखेंगे। देखेंगे अभी यहाँ पर, मिल गए बुक, वो प्रेरणा बेन के साथ देख लेना, वो आएगी तभी। यहाँ भी सूत्रों का प्रारंभ होता है, यहाँ से ऊपर पढ़ेंगे। एत्तो अनुभाग विहत्ति दुविहा, मूल पयड़ी अनुभाग विहत्ति चेव, उत्तर पयड़ी अनुभाग विहत्ति चेव। दो नंबर के पृष्ठ पर आए, अभी हम पहला ही सूत्र पढ़ रहे हैं, उसका अर्थ है यहाँ से अनुभाग विभक्ति का कथन प्रारंभ होता है। उसके दो भेद हैं, मूल प्रकृति अनुभाग विभक्ति और उत्तर प्रकृति अनुभाग विभक्ति। अभी तक हमने स्थिति विभक्ति देखी थी, यहाँ सब अनुभाग की चर्चा चलेगी। शंका, अनुभाग किसे कहते हैं? उसका समाधान, कर्मों के अपना कार्य करने की शक्ति को अनुभाग कहते हैं। उसके हमने दूसरे भी नाम देखे थे, उसको रस भी कहते हैं, विपाक भी कहते हैं, अनुभव भी कहते हैं, तत्वार सूत्र में आया है। अर्थात कर्मों में अपना अपना फल देने की जो शक्ति रहती है, उसे ही अनुभाग कहा जाता है। मिथ्यात्व कर्म में अपना फल देने की शक्ति है, ज्ञानावरण में अपना फल देने की शक्ति है, हर एक जो कर्म है उसका अपना अपना फल देने की शक्ति है, अलग अलग। और अलग अलग तो शक्ति है, और उसमें भी शक्ति के भेद भी होंगे। जैसे ज्ञानावरण के अपने भी मंद से तीव्रता की ओर बहुत सारे शक्ति के भी भेद होंगे, उसी को यहाँ अनुभाग विभक्ति कहेंगे, भेदों को विभक्ति कहेंगे, अलग अलग अनुभाग जो पाए जाएंगे। उस देखा ही नीचे दिखा है, उस अनुभाग की विभक्ति अर्थात भेद या विस्तार जिस अधिकार में कहा जाता है उसका नाम अनुभाग विभक्ति है। उसके दो अधिकार हैं, मूल प्रकृति अनुभाग विभक्ति। मूल प्रकृति यानी मोहनीय प्रकृति इतना ही कहेंगे, तो मोहनी की उत्कृष्ट और मोहनी की जघन्य जहाँ जो पॉसिबल है उसमें कौन सी प्रकृति है, लोभ की है या मान की, उसकी बात नहीं चलेगी। उसको कहेंगे मूल प्रकृति अनुभाग विभक्ति। और दूसरा जो अधिकार है उसका नाम है उत्तर प्रकृति अनुभाग विभक्ति। जिस अधिकार में मूल प्रकृतियों के अनुभाग का विभाग किया जाता है, कहा जाता है, किया नहीं जाता, कहा जाता है, वह मूल प्रकृति अनुभाग विभक्ति है। और जिसमें उत्तर प्रकृतियों के अनुभाग के विस्तार को कहा जाता है वह उत्तर प्रकृति अनुभाग विभक्ति है।
अनुभाग विभक्ति चार घातियां कर दी होगी के आठों कर देते।
हाँ, आपका ऐसा प्रश्न है ना कि ये जो अनुभाग विभक्ति क्या चार घाती कर्म में ही होगी, तो मेरा प्रश्न है फल देने की शक्ति कौन कौन से कर्मों में होती है?
सभी
कर्मों में है ना, तो वो अनुभाग विभक्ति भी सभी कर्मों में अपनी अपनी होगी, परंतु यहाँ सभी की बात करेंगे ही नहीं, यहाँ तो मात्र मोहनी की बात चलेगी। अच्छा है प्रश्न ऐसा पूछना तो सबका समाधान हो जाता है। इस प्रकार यहाँ दो ही अधिकार है, तीसरे अधिकार का अभाव है क्योंकि उसका कोई विषय नहीं है। मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति इतने दो ही है। शायद कहा जाए कि दोनों अधिकारों का समूह उसका विषय है, अर्थात तीसरे अधिकार में मूल प्रकृति अनुभाग विभक्ति और उत्तर प्रकृति अनुभाग विभक्ति का कथन रह सकता है, सो भी ठीक नहीं है क्योंकि समूह वालों से अतिरिक्त समूह का अभाव है। क्या कहते हैं? समूह तो समूह वालों से होता है, समूह वालों के बिना समूह नहीं हो सकता, ये बताना चाहते हैं। तो उन्हीं को तो ले लिया उसके में, मूल प्रकृति में सबको एक साथ लिया और उसको अलग अलग किया तो उत्तर प्रकृति हो गई, तो दोनों ही आ गई। अब तीसरा और कोई अधिकार इसमें नहीं हो सकता। और क्या कहते हैं, समूह वालों से अतिरिक्त समूह का अभाव है, यानी समूह वालों से ही समूह बनता है, जैसे फैमिली मेंबर से ही फैमिली बनेगी। और समूह वालों का ज्ञान हो जाने से ही उनके समूह का भी ज्ञान हो जाता है। सारांश यह है कि जब पहले अधिकार में मूल प्रकृति अनुभाग विभक्ति का और दूसरे में उत्तर प्रकृति अनुभाग विभक्ति का कथन हो ही चुकता है, तो उनका ज्ञान हो जाने से उनके समूह का भी ज्ञान हो ही जाता है, क्योंकि दोनों विभक्तियों का समूह उनसे कोई पृथक वस्तु नहीं है। दोनों ही विभक्ति आ गई ना, मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति विभक्ति आ गई उसमें, अतः तीसरे अधिकार में कथन करने के लिए कोई विषय ही नहीं है, इसलिए यहाँ तीसरे अधिकार का अभाव है। दो नंबर के पृष्ठ पर चल रही है बात अपनी। अब सूत्र नंबर दो को हम पढ़ेंगे। एतो मूल पयड़ी अनुभाग विहत्ति भणी दौवा चाहिए के भाणी दौवा, भाणी दूणम, भाणी दौवा ही लिखा है नीचे। कथन कराना चाहिए, बणी दव्य ने कथन करना चाहिए, भाणी दव्य ने कराना चाहिए, ठीक है। क्या लिखा है? एतो मूल पयड़ी अनुभाग विहत्ति भाणी दव्य, यहां से मूल प्रकृति अनुभाग विभक्ति का कथन कराना चाहिए। मिला नहीं बहन। हाँ, इस सूत्र से मूल प्रकृति अनुभाग विभक्ति का कथन करा के उसे ग्रहण करना चाहिए, यानी उसे जानना चाहिए। अब इस सूत्र के उच्चारणाचार्य कृत व्याख्यान को कहेंगे। मूल प्रकृति अनुभाग विभक्ति के विषय में ये 23 अनुयोग द्वार जानने योग्य हैं, जो मूल में नहीं कहे थे परंतु उच्चारणाचार्य ने उनके ये 23 भेद करके बताए। यहाँ पर हमने इसको विषय परिचय में भी पढ़ा था, ये सारा जो हमने वहां पढ़ा है वही विषय आने वाला है, विस्तार से आएगा थोड़ा। संज्ञा, सर्वानुभाग विभक्ति, नो सर्वानुभाग विभक्ति, उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति, अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति, जघन्य अनुभाग विभक्ति, अजघन्य अनुभाग विभक्ति, सादी अनुभाग विभक्ति। देखो ये नाम भी हमने देखे थे, उसका थोड़ा स्वरूप भी देख लिया है, फिर अभी ये विस्तार से आने ही वाला है, एक एक अधिकार आगे आ जाएगा। नौ नंबर पर अनादि अनुभाग विभक्ति, फिर ध्रुव अनुभाग विभक्ति, अध्रुव अनुभाग विभक्ति, एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व, काल यानी एक ही जीव की अपेक्षा काल, और अंतर यानी एक जीव की अपेक्षा अंतर। उसके पश्चात नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय, फिर अभी आगे के सब नाना जीवों की अपेक्षा हो गए, भागा भाग, परिमाण यानी प्रमाण, क्षेत्र यानी नाना जीवों की अपेक्षा, स्पर्शन, और फिर काल और अंतर लिखा है वो नाना जीवों की अपेक्षा बता रहे हैं, भाव और अल्पबहुत्व। यहाँ सन्निकर्षण योग द्वार नहीं है, क्योंकि ये मूल प्रकृति की बात है, तो हम कंपैरिजन किसे कहेंगे, किसके साथ करेंगे, क्योंकि एक प्रकृति में सन्निकर्ष संभव नहीं है। जना एक ही है तो एक के साथ जो दूसरी का हम कंपेयर करते हैं तो वो यहाँ नहीं हो सकता। यहाँ भुजगार, पदनिक्षेप, वृद्धि विभक्ति और स्थान, ये चार अधिकार और होते हैं, यानी वो 23 तो हम देख ही लिए हैं, और इन एडिशन यहाँ भुजगार भी है, पदनिक्षेप। जब भुजगार कहेंगे तो सभी उसमें आ जाएंगे, वृद्धि विभक्ति और स्थान। अब इनके द्वारा क्रम से मूल प्रकृति अनुभाग विभक्ति का कथन करेंगे, ये 23 का क्रम से कथन होगा यहाँ। वह इस प्रकार है, संज्ञा, अभी संज्ञा वाला जो अधिकार है पहला नंबर का, संज्ञा दो प्रकार की है, घाती संज्ञा और स्थान संज्ञा। घाती संज्ञा दो प्रकार की है, जघन्य और उत्कृष्ट। उनमें से पहले उत्कृष्ट घाती संज्ञा का प्रकरण है, उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार। देखो ये घाती जो है ना, घाती संज्ञा क्यों कही घाती, वो तो आगे लिखा ही है, वो जीव गुणों का घात होता है इसलिए घाती कहा। उसमें भी पूरा घात करने की अपेक्षा सर्वघाती कहेंगे और देशघाती कहेंगे, पढ़ेंगे हम इसकी, ये बातें सभी आने वाली है, हमने विषय परिचय में भी इसको विस्तार से देखा है। तो घाती संज्ञा दो प्रकार की है, जघन्य और उत्कृष्ट। उनमें से पहले उत्कृष्ट घाती संज्ञा का प्रकरण है, उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओघ निर्देश की अपेक्षा मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति सर्वघाती है। क्या कहना चाहते हैं, मोहनीय कर्म इन जनरल लिया है, और उसकी उत्कृष्ट जो विभक्ति होगी यानी उत्कृष्ट अनुभाग जो कोई पॉसिबल है मोहनीय कर्म में, उत्कृष्ट पॉसिबल अनुभाग, तो वो कहते हैं वो सर्वघाती होता है। अब जघन्य उसकी बात करेंगे बाद में। तो यहाँ पूछ रहे हैं शंका, सर्वघाती पद का क्या अर्थ है, सर्वघाती शब्द से हमें क्या समझना चाहिए, उसका समाधान। अपने से प्रतिबद्ध जीव के गुण को, अपने से प्रतिबद्ध का अर्थ होता है जब मोहनी से प्रतिबद्ध कौन से कर्म है, सॉरी कौन से गुण है, श्रद्धा और चारित्र, तो उनका अपने से प्रतिबद्ध यानी जिनके साथ इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है उसको अपने से प्रतिबद्ध कहेंगे। ज्ञानावरण के साथ प्रतिबद्ध कौन है, तो जीव का ज्ञान गुण। दर्शनावरण के साथ दर्शन गुण, उसको प्रतिबद्ध कहेंगे। हम उसको प्रतिपक्ष भी कह सकते हैं, पर यहाँ प्रतिबद्ध शब्द आया है। अपने से प्रतिबद्ध जीव के गुण को पूरी तरह से घातने का, आप कहेंगे हमने तो गुण की परिभाषा देखी है, याद है ना कि भूल गए बहुत पहले। हाँ, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहते हैं उनको गुण कहते हैं। तो यहाँ तो कह रहे जीव गुण को पूरी तरह से घात करता है, तो गुणों का तो घात होता ही नहीं है। तो गुण में जो शक्ति है वो पर्याय में प्रकट नहीं होने देना, बिल्कुल उसको कहेंगे पूरा घात किया। और पर्याय में थोड़ी प्रकट रहेगी तो हम कहेंगे देश घात। तो अपने से प्रतिबद्ध जीव के गुण को पूरी तरह से घातने का जिस अनुभाग का स्वभाव है उस अनुभाग को सर्वघाती कहते हैं। ये अनुभाग की बात चल रही है यहाँ पर, प्रकृति में अनुभाग है, वो अनुभाग हम स्पर्धकों में मापेंगे, अविभाग प्रतिच्छेदों में मापा जाता है। फिर अविभाग प्रतिच्छेदों से हमने देखा ना, वर्ग है, वर्गणा है, स्पर्धक है वगैरह। तो उस अनुभाग को सर्वघाती कहते हैं। मोहनीय कर्म की अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति, जो उत्कृष्ट नहीं है उसको अनुत्कृष्ट कहेंगे। उत्कृष्ट के अलावा जो कुछ है वो सब क्या कहलाएगा, अनुत्कृष्ट। तो मोहनीय कर्म की अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति सर्वघाती भी है और देशघाती भी है। क्या कहते हैं देखना, अभी ये अंतिम लाइन तीसरे पृष्ठ पर चल रही है अपनी। मोहनीय कर्म की हमने उत्कृष्ट देखा था, मोहनी की उत्कृष्ट कैसी है, उत्कृष्ट अनुभाग जो मोहनीय का है वह कैसा है, सर्वघाती है। और जो उत्कृष्ट नहीं है वो कैसा है, तो कहते हैं सर्वघाती भी है और देशघाती भी है। उत्कृष्ट यानी सबसे टॉप मोस्ट। हमने अनुभाग के चार, जो स्पर्धकों के चार भेद देखे थे, लता, दारू, अस्थि और शैल। तो शैल में भी जो मैक्सिमम है वो तो सर्वघाती है ही है, वो मैक्सिमम को छोड़कर अन्य शैल है, अन्य अस्थि है, दारू है और लता है, इन सब में क्या कहेंगे हम, सर्वघाती भी है ऊपर के कुछ और नीचे के देशघाती भी है। तो अनुत्कृष्ट में सर्वघाती भी होते हैं और देशघाती भी होते हैं। ये ख्याल में आई बात। हमने जो अनुभाग की अपेक्षा से चार भेद देखे थे तो उसमें से लता भाग वाले और दारू का जो अनंतवा भाग है इतने तो देशघाती स्पर्धक कहते हैं, हम यहाँ देशघाती अनुभाग कहेंगे। और दारू का रिमेनिंग अनंत बहुभाग अस्थि और शैल ये सर्वघाती है। अब यहाँ कहते उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति यानी मैक्सिमम पॉसिबल, ये जो कोई एक विकल्प है वो तो सर्वघाती ही है, इसके अलावा जो कुछ है अन्य उसको अनुत्कृष्ट कहेंगे। जघन्य भी उसी में आ गया, तो वो कैसे है, सर्वघाती भी है और देशघाती भी है।
तो यहाँ पे शैल और अस्थि में भी देशघाती और स्पर्धक
नहीं, इन सबको मिलकर हमने अनुत्कृष्ट कहा है। रिमेनिंग शैल, अस्थि, दारू और लता ये सब मिलकर बात कह रहे हैं, ये है अनुत्कृष्ट। तो उनमें सर्वघाती भी है और देशघाती भी है। शैल वाले में सर्वघाती देशघाती नहीं करनी बात। अनुत्कृष्ट में शैल भी है, अस्थि भी है, दारू वाले भी है और लता वाले भी है। इसी प्रकार अब ये जो मोहिनी की बात बताई है, इन जनरल ओघ में ने सभी जीवों में इन जनरल बात की है। इसी प्रकार सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यनि, पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रस पर्याप्त, पांचों मनोयोगी, यागी हुआ मनोयोगी, पांचों वचन योगी, काय योगी, औदारिक काय योगी, क्रोधी, मानी, मायावी, लोभी, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, भव्य, संगी और आहारक में जानना चाहिए। अभी उसका विशेषार्थ देखेंगे, यानी ये जो ओघ का कथन और कहां कहां घटित होता है उसकी यहां चर्चा की। मोहिनी कर्म के अनुभाग का वर्णन करने के लिए जो 23 संयोग द्वार बतलाए हैं, उनमें से पहले संज्ञा के द्वारा अनुभाग का वर्णन किया है। संज्ञा के दो भेद कहे, एक घाती, दूसरा स्थान, यानी घाती संज्ञा और स्थान संज्ञा। मोहिनी कर्म घाती है क्योंकि वह आत्मा के गुणों को घातता है, इसलिए उसके अनुभाग की घाती संज्ञा है, अनुभाग को ही घाती कह दिया। क्यों? वो घाती कर्म है ना, घाती कर्म के अनुभाग को भी घाती कहेंगे और अघाती कर्म के अनुभाग को क्या कहेंगे? अघाती कहेंगे। वह अनुभाग की हीनाधिकता को लिए हुए अनेक प्रकार का होता है।
यहाँ पे क्या है? इसके अलावा जो मारना है वहाँ पे ये कथन नहीं हो सकता है सर्वघाती और देशघाती?
हाँ, उसमें जो कोई बात होती है ना, उसमें जो कोई डिफरेंस है, तो उसमें वो वहाँ सर्वघाती देशघाती है कि नहीं है? मैक्सिमम जैसे अब अपगत वेदी मारगणा ले लो,
नहीं देशघाती है।
हाँ, तो वो बात आएगी। यहाँ तो ओघ में कथन चल रहा है,
यहाँ पे तो वैकल्पिक का
वो सब। हाँ, वो सबको नहीं लिया है अभी, क्योंकि जब हम आदेश में देखेंगे। ये बातें ऐसी घटित हुई है कि जहाँ मोहिनी का जघन्य मिनिमम पॉसिबल भी अनुभाग पॉसिबल है, उसकी अपेक्षा से लिए। नहीं समझे? मोहिनी का क्षय कौन से किस जीव में? मनुष्य में होता है,
छठे से ऊपर गुण स्थान भी।
हाँ, तो उसका जो मिनिमम पॉसिबल है जघन्य अनुभाग या अनुत्कृष्ट में जो सब है, तो मनुष्य में ही पॉसिबल है, उस अपेक्षा से ये लिए है। जब हम मार्गणा देखेंगे तो ये और ज्यादा आपको क्लियर होगा। देखो, वह अनुभाग की हीनाधिकता को लिए हुए अनेक प्रकार का होता है। ये जो अनुभाग है वो हीन भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। सबसे अधिक फलदानी शक्ति को उत्कृष्ट अनुभाग कहते हैं, यानी तीव्र है वो, और उसके सिवा शेष को अनुत्कृष्ट कहते हैं। उत्कृष्ट के बिना जो कोई है वो सब अनुत्कृष्ट कहलाएगा। हीन फलदान की शक्ति को जघन्य अनुभाग कहते हैं, यानी मिनिमम पॉसिबल, और उसके सिवा शेष को अजघन्य कहते हैं। इस प्रकार घाती मोहिनी कर्म के अनुभाग के चार प्रकार हो जाते हैं, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य। देखो, ऐसे चार अलग अलग नहीं कहना स्पर्धकों की, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट में सब कुछ आ गए, जघन्य और अजघन्य में सब आ गए, ऊपर के उत्कृष्ट भी उसी में इंक्लूड हो गया। इन चार भेदों में से उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति सर्वघाती ही होती है, परंतु अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति में जघन्य भी सम्मिलित है, इसलिए वह सर्वघाती और देशघाती दोनों प्रकार की होती है। जो अनुभाग विभक्ति आत्मा के गुणों को पूरी तरह से घाती है वह सर्वघाती है, और जो उन्हें एक देश से घाती है वह देशघाती है। अनुभाग के भेद प्रभेदों को सर्वघाती और देशघाती की तरह एक दूसरे प्रकार से भी विभाजित किया जाता है, और वह प्रकार है स्थान संज्ञा का। जैसे यहाँ सर्वघाती और देशघाती में डिवाइड किया है, तो दूसरे उसके क्या नाम है, स्थान संज्ञा। एक है घाती संज्ञा, और घाती के भेद किए सर्वघाती और देशघाती। अब उसको स्थान संज्ञा में डिवाइड करेंगे, स्थान संज्ञा की अपेक्षा डिवाइड करेंगे, तो मौनी कर्म के अनुभाग स्थानों को चार हिस्सों में बांटा जाता है, एक स्थानिक, द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक और चतुस्थानिक। एक स्थानिक स्पर्धक देशघाती ही होते हैं, द्विस्थानिक स्पर्धक देशघाती भी होते हैं और सर्वघाती भी होते हैं। जब हम द्विस्थानिक कहेंगे तो दारू वाले, तो उसमें देशघाती भी पाए जाते हैं, सर्वघाती भी। किंतु शेष अनुभाग स्पर्धक यानी त्रिस्थानिक और चतुस्थानिक सर्वघाती ही होते हैं, उसी को हमने लता, दारू, अस्थि और शैल नाम दिया था। ये ओग की अपेक्षा कथन हुआ। अब आदेश की अपेक्षा यानी मार्गणाओं में कथन करेंगे। नारकियों में मौनी कर्म की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति सर्वघाती है। यानी यहाँ वो उसकी क्षपणा आदि का कार्य नहीं है, और
यहाँ पे तो अनंतानुबद्धि की विसंयोजना तो होती है।
यहाँ उत्तर प्रकृति की बात नहीं हो रही है, मोहनी इन जनरल इतना ही लेना, मोहनी कर्म ही लिया है। ये जो उत्तर प्रकृतियों की बात हम आगे के अधिकार में देखेंगे, तब वो उसका कथन भी अलग होगा। इसी प्रकार सब नारकी, सब तिर्यंच, मनुष्य अपर्याप्त, सब देव, सब एकेंद्रिय, यानी वो सबसे जघन्य वाला जो है उसको अनुत्कृष्ट में जहाँ इंक्लूड करते हैं वो मार्गणा ऊपर लिए, जघन्य जघन्य भी अनुत्कृष्ट होता है। अभी घाती की बात नहीं करना, जब हम उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट कह रहे हैं ना, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट में, उत्कृष्ट में तो टॉप मोस्ट लेना, अनुत्कृष्ट में जघन्य से लही, जघन्य को यहाँ देशघाती लिया अनुत्कृष्ट में, परंतु वो देशघाती के बिना ऐसा लेना उसको। अनुत्कृष्ट में देशघाती को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि वो तो उसका सबसे जघन्य उसको लिया, तभी करेंगे उसको। जघन्य को देशघाती का यहाँ पर छोड़ दिया है, जघन्य को यानी वो देशघाती वाले को छोड़ दिया उन्होंने। हम क्या है उत्तर प्रकृति की अपेक्षा विचार करने को जा रहे हैं, इसलिए वो घोटाला हो रहा है। हाँ, वो तो बात आगे चलेगी। तो इसी प्रकार ये आदेश में देख रहे हैं, जैसे हमने नारकियों में देखा है ऐसा ही मनुष्यों में वो जघन्य पॉसिबल है, वैसा यहाँ नहीं होता है, इसलिए इसको उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट दोनों ही सर्वघाती कहे। इसी प्रकार सब नारकी, सब तिर्यंच, मनुष्य अपर्याप्त, सभी देव, सब एकेंद्रिय, सब विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय अपर्याप्त, सब पृथ्वी कायिक, सब जल कायिक, सब तेज कायिक, सभी वायु कायिक, सब वनस्पति कायिक, त्रस अपर्याप्त, त्रस पर्याप्त को ऊपर लिया था ना, औदारिक मिश्र का योगी, वैक्रियक का योगी, वैक्रियक मिश्र का योगी, कार्मण का योगी, आहारक का योगी, आहारक मिश्र काय योगी, क्योंकि उस अवस्था में भी उनके आगे चलकर वो क्षपणा होती है, जगन्य तभी हो जाएगा। तीनों वेदी, क्योंकि अपगत वेद होने पर वो जघन्य हो जाएगा सूक्ष्म सांप्रदाय के अंत में। कुमति ज्ञानी, कुशत ज्ञानी, विभंग ज्ञानी, परिहार विशुद्ध संयमी, क्योंकि उनका भी गुणस्थान छठा सातवा है। संयता संयत असंयत, शुक्ल करना शुल्क हुआ, शुक्ल नहीं शुक्ल बराबर है, शुक्ल के सिवा शेष पांचों लेशा वाले, क्योंकि क्षपक श्रेणी में तो शुक्ल लेशा होती है। अभव्य वेदक समय दृष्टि, उपशम समय दृष्टि, सासाधन समय दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, असंगी और अनाहारकों में जानना चाहिए। यानी उन्होंने तो आसान कर दिया, जो जहाँ तो क्षपणा होती है वहाँ पर वो हाँ जघन्य है, और उसके बिना अनुत्कृष्ट है वो सर्वघाती है। विशेषार्थ, उक्त सब मार्गणाओं में मोहनीय कर्म का एक स्थानिक अनुभाग नहीं रहता है, जैसा कि आगे के ज्ञान स्थान संज्ञा अनुयोग द्वार से स्पष्ट है। एक स्थानिक यानी जघन्य, इतना ही ले लो। हाँ, उन्होंने अभी नामों में उसको डिवाइड नहीं किया। जब उसका नाम, हाँ नाम वो स्वयं कहेंगे और उसको बताएंगे। तथा द्विस्थानिक अनुभाग का भी वही अंश रहता है जो सर्वघाती है। द्विस्थानिक में दोनों अंश देखे थे हमने। अतः इनमें मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति सर्वघाती होती है। देखो, हमने देखा था, हम तो ऐसा देखते हैं ना कि वो जघन्य अनुभाग वहां पाया जाएगा कि नहीं जाएगा, लता वगैरह की बात करते हैं। परंतु कल हमने ये भी पढ़ा था विषय परिचय में कि ये जब अनुभाग है वो सत्ता में कितना पड़ा है उसकी बात चल रही है। तो सत्ता का अनुभाग कब नष्ट होगा या कब एक स्थानिक हो जाएगा, बंद की अपेक्षा ही बात वो भी नहीं चल रही, सत्ता की अपेक्षा बात चल रही है। देखो, अभी हम मिथ्यात्व के निषेकों की जब बात की थी तो निषेक तो एक समय में जितने बांधे मान लेते इतने 70 कोड़ा कोड़ी के हो गए, आबादा को छोड़कर ये सब निषेक रचना है। तो ये सभी निषेकों में उत्कृष्ट भी पड़ा है, जगन्य भी पड़ा है, जो कुछ है। फिर भी जो उत्कृष्ट है तो हम उस उत्कृष्ट वाला ही कहेंगे, तब तक उसको जगन्य नहीं कहेंगे। भले कहीं पर वो अभी जो कोई है मिथ्यात्व के बाद सम्यक दर्शन प्राप्त किया, मुनि हो गए, तो वहां का जो अनुभाग है या उदय जो है, अनुभाग का उदय वो मंद हो रहा है, हमने देखा ना, मंद उदय पाया जाएगा। परंतु वहां पर भी जो मिथ्यात्व पड़ा है उसका अनुभाग कितना है?
सर्वघाती है,
सर्वघाती है, तीव्र है ना अनुभाग उसका। तो उसका अनुभाग कब कम होगा? हमने देखा अनुभाग कांडक हो गए तब जाके उसका अनुभाग सत्ता में से नष्ट होगा। उदय की बात नहीं चल रही यहाँ पर, इसलिए ये सारे जो यहाँ मार्गणाएं बतलाई है तो उनमें वो क्षपक श्रेणी आदि पॉसिबल नहीं। ये तीनों वेदी वाले भी लिए, तो जब तक वेद का उदय है तब तक वो अपगत वेदी नहीं हुआ है, तो आगे जो क्षपणा का कार्य होता है वो नहीं होगा। अनुभाग कांडक जब हो गए तब जाके उनके वहां अनुभाग के वो जगन्य अनुभाग पाया जाएगा। इसलिए उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट में हो सकता है वो टॉप मोस्ट नहीं है, जगन्य की ओर आ रहा है, फिर भी अभी जगन्य नहीं हुआ है। देखो, विशेषार्थ में हमने क्या देखा, उक्त सब मार्गणाओं में मोहनीय कर्म का एक स्थानिक अनुभाग नहीं रहता, उसको एक स्थानिक ही कहेंगे अभी हम, जैसा कि आगे के स्थान संज्ञा अनुयोग द्वार से स्पष्ट है। तथा द्विस्थानिक अनुभाग का भी वही अंश रहता है जो सर्वघाती है। अतः इनमें मोनीय कर्म की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति सर्वघाती होती है। वेद रहित जीव की, देखो अभी हमने नारकी देखे और नारकियों के समान तिर्यंच देखे, मनुष्य पर्याप्त देखे, सभी देव देखे, बहुत सारी मार्गणाएं उन्होंने एक इंद्रिय आदि बता दी। अब वेद रहित जीव यानी अपगत वेदी जीव लिए, वेद रहित जीव की उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति सर्वघाती है और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति सर्वघाती अथवा देशघाती है। इसी प्रकार आभिनिबोधिक ज्ञानी, क्षुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनपरे ज्ञानी, संयमी, सामायिक संयमी, छेदोपस्थापना संयमी, सूक्ष्म सांप्राय संयमी, अवधि दर्शनी, शुक्ल लेशा वाले, सम्य दृष्टि और क्षायिक सम्य दृष्टि के जानना चाहिए। अकषायिक जीव की, देखो यहाँ जो सर्वघाती और देशघाती दोनों कहे हैं, क्यों? वेद रहित जीवों में उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति तो सर्वघाती है, अनुत्कृष्ट में दोनों बताए हैं। जघन्य क्यों नहीं बताया, एक स्थानिक क्यों नहीं बताया?
उपशम श्रेणी के अपेक्षा।
हाँ, क्योंकि वेद रहित जीव उपशम श्रेणी में भी है, उपशम श्रेणी में वहां सत्ता है, तो सत्ता है तो वहां सर्वघाती भी होगे, क्योंकि वहां कोई क्षपणा का कार्य नहीं होता है। तो इसी प्रकार आभिनिबोधिक ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी वगैरह हमने पढ़े थे। देखो आगे, अकषायिक जीव की, अकषायिक जीव और मोनी की सत्ता वाला कौन सा जीव है? ग्यारहवें वाला। उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति सर्वघाती है। इसी प्रकार यथाख्या चारित्र संयत में जानना चाहिए, ये बात ख्याल में आई? क्योंकि वहां अनुत्कृष्ट में जघन्य नहीं हो सकती, जो क्षपक श्रेणी में होगी। अपगत वेद होते हुए क्षपक श्रेणी में तो जघन्य हो जाएगी, परंतु उपशम श्रेणी में तो नहीं होगी, वहां तो उपशमित है, अनुभाग तो बना है वहां पर। विशेषता, विशेषार्थ, मूल में कही गई क्षायिक सम्य दृष्टि पर्यंत मार्गणाओं में मोनीय कर्म की उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति तो सर्वघाती ही होती है, किंतु अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति सर्वघाती भी होती है और देशघाती भी होती है। इसका कारण यह है कि इनके क्षपक श्रेणी में एक स्थानिक अनुभाग की भी सत्ता रहती है। यहाँ सर्वत्र सत्ता की अपेक्षा ही बात चलेगी। अकषायिक और यथाख्यात संयत जीवों के मोनी के सर्वघाती अनुभाग की ही सत्ता रहती है, क्योंकि उपशम श्रेणी की अपेक्षा ही इन मार्गणाओं में मोनी का सत्व संभव है। क्योंकि अकषायी बारहवें वाला पर भी है, यथाख्यात संयत वाला, परंतु वहां उसकी सत्ता नहीं है, अतः उनके दोनों ही अनुभाग सर्वघाती होते हैं। इस प्रकार उत्कृष्ट संज्ञा अनुगम समाप्त हुआ। संज्ञा की अपेक्षा जो एक स्थानिक द्विस्थानिक वगैरह कहेंगे और उसमें उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट की जो बात है वो यहाँ बता दें।
यहाँ पे जो सपना की अपेक्षा जो पांचों मनों के मनोयोग, पांचों मनों के मनोयोग और वचन दिया,
हाँ,
वहाँ पे असत्य भी देशघाती ही अपेक्षा ले सकते हैं।
किसकी किसकी? पांचों मनोयोगी में
मनोयोग वचनों के ऊपर बताया पहले,
हाँ,
में
उसमें तो उत्कृष्ट भी होता है जघन्य भी होता है। क्षपक श्रेणी में भी मनोयोग वचन योग है ना इनके,
पर असत्य और असत्य मनोयोग भी ले सकते हैं वहाँ पे।
हाँ, असत्य तो कहाँ तक होता है असत्य मनोयोग? हाँ, तो उसको लेना कि नहीं लेना? असत्य मनोयोग जहाँ तक है तो वहाँ ले सकते हैं उसको। उसी की तो अपेक्षा नहीं, पांचों मनोयोगी का अर्थ क्या है? कौन से पांच मनोयोग? एक तो सामान्य जिसमें सभी गर्भित है, भेद सत्य उभय अनुभय और असत्य, सत्य असत्य उभय और अनुभय, सबको लेना है। इसीलिए तो पांचों कहे ना यहाँ पर। देखो ये उत्कृष्ट संज्ञा की बात हो गई, उत्कृष्ट के साथ अनुत्कृष्ट को बताएं। अब जघन्य अनुभाग विभक्ति का प्रकरण है निर्देश निर्दोष हुआ। निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओघ निर्देश की अपेक्षा मोहिनी कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति देश घाती है। ये तो अभी ख्याल में आती है ऐसे ना बात, जघन्य अनुभाग विभक्ति जिसको एक स्थानिक कहा था वो देश घाती है, और अजघन्य अनुभाग विभक्ति देश घाती अथवा सर्वघाती है। इसी प्रकार सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यनी, पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय पर्याप्त, त्रस त्रस पर्याप्त, पांचों मनोयोगी जो हमने पहले भी देखी थी लिस्ट, पांचों वचन योगी, काय योगी, औदारिक काय योगी, अपगत वेदी लिए अभी
जगन्य में लिए,
हाँ जगन्य लेना है ना इसलिए अपगत वेदी को, चारों कषाय वाले, क्योंकि अपगत वेद होने पर भी कषाय का तो वहाँ सद्भाव है। आभिनिबोधिक ज्ञानी, शुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परे ज्ञानी, संयत सामायिक संयमी, छेदोपस्थापना संयमी, सूक्ष्म सांप्राय संयमी, चक्षुदर्शनी अचक्षुदर्शनी, अवधि दर्शनी, शुक्ल, यहाँ शुक्ल बराबर करना, शुक्ल लेशा वाले, भव्य सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि, संगी और आहारकों में समझना चाहिए। जहाँ जहाँ ये जघन्य पॉसिबल है उसकी बात यह बता दें। सूक्ष्म सांप्राय में जघन्य और अजघन्य में दोनों जो लिए हैं वो तो उपशम श्रेणी की अपेक्षा समझना। अजघन्य भी लिए न, अजघन्य में सर्वघाती भी लिए है तो उसकी अपेक्षा लेना है। अब जहां जहां ये क्षपक श्रेणी पॉसिबल है वहीं पर वो जघन्य हो गए, अदरवाइज अजघन्य हो गए। अब आदेश की अपेक्षा नारकियों में जघन्य और अजघन्य ये दोनों कैसे सर्वघाती है। इसी प्रकार सब नारकी यानी जहां जहां एक क्षपणा नहीं होती, क्षपक श्रेणी नहीं होती, वो सब मार्गणा यहाँ बताएंगे। सब नारकी छठे पृष्ठ पर आए हम, सब तिर्यंच, मनुष्य अपर्याप्त, सब देव, सब एकेंद्रिय, सब विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय अपर्याप्त, सब पृथ्वी कायिक, सब जल कायिक, सब तेजस कायिक, सब वायु कायिक, सब वनस्पति कायिक, त्रस अपर्याप्त, औदारिक मिश्र कायोगी, वैक्रिक कायोगी, वैक्रिक मिश्र का योगी, कार्मण का योगी, आहारक को भी लिया क्योंकि वहां भी कोई क्षपणा का कार्य नहीं होगा, आहारक का योगी, आहारक मिश्र का योगी, तीनों वेद वाले क्योंकि अपगत वेद होने के पश्चात वो तो उसका जघन हो जाए, अकषायिक, कुमति ज्ञानी, कुशुत ज्ञानी, विभंग ज्ञानी, परिहार विशुद्ध संयमी, यथाख्यात चारित्र संयमी, क्यों ग्यारह वाला उसकी सत्ता है और वहां तो कुछ क्षपणा का कार्य नहीं है तो उसमें सर्वघाती कहेंगे, संयमा संयमी असंयमी, शुक्ल करना, शुक्ल लेशा के सिवा शेष पांचों लेशा वाले, क्योंकि शुक्ल लेशा में क्षपणा होती है तो उसको वो जघन्य में लिया। अभव्य वेदक समय दृष्टि, उपशम समय दृष्टि, सासाधन समय दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, असंगी और अनाहारक में समझना चाहिए। विशेषार्थ मूल में कही गई आहारक पर्यंत मार्गणाओं में क्षपक श्रेणी की अपेक्षा एक स्थानिक अनुभाग का भी सत्व पाया जाता है। ये पहले जो बताया था उन्होंने, अतः उनमें जघन्य अनुभाग देशघाती और अजघन्य अनुभाग देशघाती तथा सर्वघाती होता है, तथा शेष अनाहारक पर्यंत मार्गणाओं में सर्वघाती अनुभाग का ही सत्व पाया जाता है। अभी अभी जो हमने नारकियों के साथ जो मार्गणाएं देखी थी उनमें सभी में सर्वघाती का ही अनुभाग है। ये सत्व की बात चल रही, अनुभाग का सत्व बार बार ये जो देख रहे हैं ना, अनुभाग से कितनी स्थितियां बाकी है उससे कुछ मतलब नहीं है। निषेकों की बात अलग है और यहाँ तो अभी हमें सोचना है अनुभाग की अपेक्षा। निषेक की कितनी भी हो उसमें कांडघात हो या कुछ भी हो, जब तक अनुभाग का कांडघात नहीं होगा तो अनुभाग का कम होना नहीं होगा। और कभी कभी सर्वघाती का कांडक होकर भी सर्वघाती रहते हैं ना, जब तक वो देशघाती रूप से नहीं हो गए तब तक वो सत्ता में पड़े हैं तो हम उसको सर्वघाती कहेंगे। तो कहते अनारक आदि मार्गणाओं में सर्वघाती अनुभाग का ही सत्व पाया जाता है, अतः उनमें जघन्य और अजघन्य दोनों अनुभाग सर्वघाती ही होते हैं। यहाँ यह स्मरण रखने की बात है कि अनुभाग के ये उत्कृष्ट आदि भेद ओह और आदेश दो प्रकार से किए हैं, इसलिए जहाँ जो संभव हो उस अपेक्षा से उन्हें घटित कर लेना चाहिए। यानी जहाँ जो संभव है नारकियों में जितना संभव है, अभी एकेंद्रियों को भी लिया, एकेंद्रियों में जितना संभव है अनुभाग उसको वहां लेना चाहिए। इस प्रकार जघन्य संज्ञा अनुगम समाप्त हुआ। स्थान संज्ञा दो प्रकार की है, जघन्य और उत्कृष्ट। उनमें से यहाँ उत्कृष्ट का प्रकरण है। निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओघ की अपेक्षा मुनि कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग स्थान, अभी स्थान की बात है ना, पहले अनुभाग जो देशघाती है के सर्वघाती है उत्कृष्ट में वो बताया, अभी स्थान में वो चतुस्थानिक आदि बात करेंगे। नहीं समझे? देखो मौनी कर्म है ना, उसको संज्ञा चल रही है अभी, उसकी घाती संज्ञा है, उसका नाम घाती है, तो उसमें तो अनुभाग की अपेक्षा बात चल रही है। उसका मौनी कर्म घाती कर्म होने से उसके अनुभाग को भी घाती कहेंगे। अनुभाग की घाती यह संज्ञा है नहीं, यह नाम है। तो वो घाती में दो भेद किए, सर्वघाती और देशघाती। यानी अनुभाग को सर्वघाती कहा और अनुभाग को देशघाती कहा, सर्वघाती कहा और अनुभाग को ही देशघाती कहा। यानी अनुभाग के दो प्रकार हैं, सर्वघाती और देशघाती। तो उसमें उत्कृष्ट अनुभाग जो है वो सर्वघाती होता है और एकदम जो जघन्य है वो देशघाती होता है। तो जिसमें वो देशघाती वाला नहीं है, वो देशघाती कब कहा? क्षपणा में। वो अपगत वेद होने पर जो क्षपणा होती है, अनुभाग कांडक वगैरह हो गए, तब जाके वो देशघाती होगा। उसके अलावा सब जगह वो सर्वघाती है। ये सत्ता में पड़े हुए की बात है, किसका बंद हो रहा है, कौन सी प्रकृति। अभी यहाँ मूल प्रकृति की मोहनीय इन जनरल बात हो रही है, इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि अरे मिथ्यात्व को तो सर्वघाती है परंतु सम्यक मिथ्यात्व या ये सम्यक तो प्रकृति तो देश, उसकी बात नहीं हो रही है। मोहनीय कर्म है ना वहां पर, उसकी बात हो रही है। उत्तर प्रकृति की बात तो हम बाद में सोचेंगे, जिसका अधिकार अलग है। तो ये घाती सर्वघाती और देशघाती बताए, उत्कृष्ट है वो सर्वघाती है, अनुत्कृष्ट में जब जघन्य पकड़ा हुआ है क्षपक श्रेणी जहां पॉसिबल है जिन मार्गणाओं में, उनको तो देशघाती कहा, और जहां क्षपक श्रेणी नहीं है वहां जो उत्कृष्ट भी सर्वघाती तो है ही है, अनुत्कृष्ट भी सर्वघाती है। जघन्य में भी ऐसा है लेना, जिन जिन मार्गणाओं में एक क्षपक श्रेणी की जहां क्षपणा होती है वो है, उसको तो जघन्य देशघाती है कहेंगे, और अजघन्य उनका देशघाती भी होगा सर्वघाती भी होगा। अब जिनमें एक शपक श्रेणी नहीं है ऐसी मार्गणाओं में तो अजघन्य ही है और वो सर्वघाती है। इतनी बात यहां हुए। अब स्थानों की बात यहां आ जाएगी। स्थान में चार प्रकार कैसे, एक स्थानिक, द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक, चतुस्थानिक। एक स्थानिक कब कहते हैं, जब क्षपणा होती है तभी। द्विस्थानिक में देशघाती भी है सर्वघाती भी, जैसे हम दारू भाग वाले में समझते थे। ये अभी वर्णन यहां करेंगे स्थान का। अब विषय परिचय भी पढ़ना आज घर में, दो दिन हमने वही किया काम। तो स्थान संज्ञा दो प्रकार की है, जघन्य और उत्कृष्ट। उनमें से यहाँ उत्कृष्ट का प्रकरण है। निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओघ की अपेक्षा मौनीय कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग स्थान, अनुभाग में उत्कृष्ट जो स्थान है वह चतुस्थानिक है। उसका नाम ही चतुस्थानिक, उसको क्या कहेंगे, चतुस्थानिक स्थान है। और अनुत्कृष्ट अनुभाग स्थान चतुस्थानिक, त्रिस्थानिक, द्विस्थानिक और एक स्थानिक होता है। उसको सबको मिलकर अनुत्कृष्ट नाम है। जिसको हम शैल कहते हैं उसको यहाँ चतुस्थानिक कहेंगे, अस्थि वाले को त्रिस्थानिक कहेंगे और दारू वाले को द्विस्थानिक। द्विस्थानिक में सर्वघाती भी होते हैं, देशघाती भी होते हैं। इस तरह से इसका अर्थ समझना है। इसी प्रकार कौन सा, इसी प्रकार कि उत्कृष्ट तो चतुस्थानिक है और अनुत्कृष्ट में तीनों है, ये चारों है, चतुस्थानिक भी है ना, रिमेनिंग चतुस्थानिक भी उसमें है। तो ये कहां कहां घटित होता है, तो कि जहां एक स्थानिक भी पॉसिबल है, कहां होता है, क्षपक श्रेणी में। ऐसी जिसमें जिसमें होगी बात, उन उन मार्गणाओं को ओग के समान कहेंगे। तो वे कौन से हैं, तीनों प्रकार के मनुष्य, सामान्य, मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनी। मनुष्यनी का अर्थ समझते हो, देखो हाँ आपको मालूम है, बोलो। हाँ, स्त्री पर्याय नहीं समझना अकेला, यहाँ भाव से स्त्री है। क्योंकि जब मनुष्यनी कहते हैं तो मनुष्यनी में पुरुष भी ऐसे आते हैं कि जो भाव से स्त्री वेद वाले हैं। क्यों, क्योंकि वे तो 14 गुण स्थान पार करके उस बहु में मोक्ष भी जा सकते हैं। उनको वो द्रव्य से स्त्री नहीं है, क्योंकि द्रव्य से पुरुष है, ऐसे ही जीव श्रेणी चढ़ सकते हैं, वो ऐसे ही जीव मुनि अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। मुनि की बात, मोक्ष की तो बात आगे। द्रव्य से स्त्री है तो उसका गुणस्थान तो 5वें तक ही जाएगा, ज्यादा नहीं। परंतु जो भाव वेद, भाव वेद ने परिणाम की अपेक्षा, कर्मों का जो उदय है, कर्म तीन प्रकार के है ना, वेद कर्म तीन प्रकार के, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुसक वेद। और इसमें ऐसा समझना, वो उदय बदलता नहीं है, जन्म से जो वेद होता है वही कायम रहता है। हाँ, जब तक अवगत वेदी नहीं हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि कुछ काल के लिए स्त्री वेद रहा, बाद में कुछ पलट गया, पुरुष वेद हुआ, या ऑपरेशन से कुछ अन्य का अन्य हो जाता है, वैसी बात नहीं है। वेद तो वही रहेगा। ये परिणामों की अपेक्षा और कर्मों के उदय की अपेक्षा बात चल रही है। ख्याल में आई बात?
हाँ, पे ये जो सामायिक छेदों पर स्थापना है, वहाँ पे चतुस्थानिक होता है, त्रिस्थानिक होता है, द्विस्थानिक होता है, और नवे गुण स्थान तक त्रिस्थानिक ही होता है, पीछे एक स्थान नहीं हो सकता है, एक स्थानीय है।
देखो, एक स्थान सामायिक छेदों पर स्थापना ये जो है वो तो छठे गुण स्थान से है।
हाँ, छठे से नौवे तक,
पर छठे सातवें में तो नहीं बताया। वो तो एक स्थानिक कब होगा, अपगत वेदी हो जाएगा, जब उसकी क्षपणा होगी तब होगा। अनुभाग कांडक उस प्रमाण में, अनुभाग कांडक होते होते भी ऐसा अनुभाग कांडक की जिसके बाद वो एक स्थानिक हो जाए,
उसको यहाँ पे
लिया। उसको यहाँ लिया है। जब कांडक तो हो गए, शुरू में भी हो गए कांडक, तो ऐसे भी होते हैं, परंतु वो सत्ता में पड़ा हुआ क्या एक स्थानिक हो जाता है उस कांडक के द्वारा? अनंत कांडक पड़े है, ये अनंत स्पर्धक पड़े हैं, उसमें से कांडक होने पर भी पहले चतुस्थानिक था, वो चतुस्थानिक ही रहेगा, कांडक हो रहे बाद में स्थिर स्थानिक पर आ जाएगा, कांडक अभी भी हो रहे। तो एक स्थानिक होने के लिए बहुत ऊपर के गुण स्थानों में जाएगा, तभी होगा एक स्थानिक। और वो क्षपक श्रेणी में पॉसिबल है। नवे में होगा, परंतु नवे में भी शुरू में तो वेद का उदय है, तब तक नहीं होगा
तो
अपगत वेदी होने।
तो नवे में एक स्थानीय हो,
एक स्थानिक होता है
तो
ना,
यहाँ पे ये सामयिक छेदोपस्थापना में चतुस्थान त्रिस्थान दो अच्छा।
वही तो, जब तक सामयिक तो छठे से है, तो छठे गुणस्थान में चतुस्थानिक है,
चतुस्थानिक है, त्रिस्थानिक हो
जाए। नहीं नहीं, त्रिस्थानिक होने के लिए उसको अनुभाग कांडक पढ़ना। हाँ, चपक श्रेणी में ही होगा वो सारा, त्रिस्थानिक द्विस्थानिक।
नहीं तो सामयिक छेदोपस्थापना छह से नौ गुणस्थान तक में,
छह से नौवे में ही लेना, नौवे में ही, और वो भी क्षपक श्रेणी में, वो भी अपगत वेदी होने पर लेना।
सामयिक छेदोपस्थापना में चार स्थानीय, तीन स्थानीय, दो स्थानीय, एक स्थानीय है, क्योंकि नौवे की अपेक्षा वहाँ पे एक स्थानीय हो जाता है जब वो वेद का सही करेगा।
हाँ तो इसीलिए
तो उसमें चारों है, तो यहाँ पे उसको क्यों नहीं लिया था?
अनुत्कृष्ट में चारों लिए ना, अनुत्कृष्ट में चारों ले लिए, उत्कृष्ट है ना, उत्कृष्ट बस, अनुत्कृष्ट में जघन्य सहित सर्व कुछ, सब कुछ, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट दो ही भेद रहे। अभी ये जो है ना 6 इंच की है, अभी इसका टॉप मोस्ट है,
हाँ, वो निकल गया,
वो अकेला उत्कृष्ट कहेगा, बाकी के जो उसमें नीचे सारे जो मिलीमीटर गिनो, सेंटीमीटर गिनो, वो सारे क्या है, अनुत्कृष्ट है। अनुत्कृष्ट में सब आ जाएगा, एक स्थानिक, द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक, चतुस्थानिक भी
है
उसमें, अनुत्कृष्ट में सब कुछ आ गए। देखो यह क्या कहा, ओग की अपेक्षा मोहनीय कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग स्थान चतुस्थानिक होता है, और अनुत्कृष्ट अनुभाग स्थान
चतुस्थानिक,
त्रिस्थानिक, द्विस्थानिक और एक स्थानिक होता है। इन सब को हम अनुत्कृष्ट ही कहेंगे। उसका स्वामित्व जब आएगा ना, तब उसकी बात करेंगे कहाँ क्या होता है। अभी तो मूल हम क्रम से जाएंगे, तो किसको अनुत्कृष्ट कहना और किसको उत्कृष्ट कहना, इतनी बात यहाँ पर होगी। इसी प्रकार तीनों प्रकार के मनुष्य, मनुष्यों से बात आई थी ना, मनुष्यनी की, एक होता है सामान्य मनुष्य, एक पर्याप्त, और एक है मनुष्यनी। स्त्री वेदी और मनुष्यनी में क्या अंतर है? स्त्री वेदी और मनुष्यनी, ऐसे हम जब दो भाग करते हैं तो आपको याद है, हाँ, मनुष्यनी के तो 1 से लेकर 14 गुणस्थान, और स्त्री वेदी के
1 से 9।
स्त्री वेदी यानी स्त्री वेद का उदय वाला, वहाँ भी भाव वेद ही लेना,
1 से 9 तक।
पर जब तक अपगत वेदी नहीं होता तब तक उसको स्त्री वेदी कहेंगे, यानी स्त्री, हाँ, 1 से 9 गुणस्थान। यहाँ भाव की ही चर्चा है। द्रव्य स्त्री की बात, तो द्रव्य स्त्री तो 5वें गुणस्थान तक है, भाव से स्त्री वेदी है। ऐसा नहीं कि वहां उनके कुछ गलत भाव चल रहे हैं, तो ये कर्म का उदय तो वही बना रहेगा, और उसका अनुभाग भले कम हो रहा है, उदय रूप अनुभाग की बात चल रही है, फिर भी वो कहलाएगा स्त्री वेदी। हम 5वें गुणस्थान से ही देखते हैं ना, वो तो ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा ली है, उसके आगे चलकर मुनिराज हुए हैं, उनके तो कोई ऐसी गड़बड़ी है ही नहीं भावों में, परंतु जो पहले से जो वेद चल रहा है वही वेद का उदय 9वें तक है, तो उसको हम कहेंगे वो स्त्री वेदी है, उसका उद्वेद का उदय चल रहा है। वेद का उदय कब से होता है? जन्म से होता है?
नहीं नहीं, अनादि से।
अनादि से तो कब रुकता है? विग्रह गति में
नहीं रुकता, नवे गुणस्थान में,
हाँ, रुकता ही नहीं है। तो हम तो जब वेद की बात आती है तो हम कुछ क्रिया के ऊपर हमारी दृष्टि, वैसा नहीं है। अब छोटे बच्चे है, न्यूबॉर्न बेबी है, उसको वेद का उदय है कि नहीं है, ख्याल में आए ना? ऐसा वो कर्मों की अपेक्षा भी लेना, उसके वैसे कोई राग द्वेष के परिणाम या कोई ऐसे आसक्ति के परिणाम हमें कोई पता नहीं है, परंतु ये कर्म का उदय है और वहाँ वैसे परिणाम भी चल रहे हैं, भले वो उस जीव के भी अपने ख्याल में नहीं आवे। तो उसको तो संज्ञा जिसको कहते ना, चार संज्ञा, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, जब तक वेद का उदय है तब तक मैथुन संज्ञा भी कहिए, संज्ञा नाम है उसका, और वो तो श्रेणी में तो केवल ज्ञानी के गम्य है वो बातें सब। नीचे के गुणस्थानों में भी वो जीव को भी कुछ पता नहीं, फिर भी केवल ज्ञानी तो जानते हैं, इसलिए वहां उसका सद्भाव कहा है। अब आगे बढ़ेंगे। तो ये जो अभी हमने मनुष्य में, सॉरी ओघ में देखा है, ऐसा ही कथन तीनों मनुष्य में पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय उच्चे करना, पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रस त्रस पर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, काय योगी, औदारिक काय योगी, चारों कषाय वाले, चक्षुदर्शनी अचक्षुदर्शनी, भव्य संगी और आहारक में जानना चाहिए। विशेषार्थ, घाती कर्मों की अनुभाग शक्ति, अभी यहाँ ये लता आदि नाम आए, ये अनुभाग शक्ति को यहाँ लता, दारू का अर्थ क्या देखा था हमने, सूखी लकड़ी काष्ठ जिसको कहते हैं, अस्थि और शैल, इस प्रकार चार प्रकार की मानी गई है। वो नाम देकर उनको समझाने का ये तरीका है, जिसमें यह चारों प्रकार की शक्ति होती है उसे चतुस्थानिक अनुभाग कहते हैं। जिसमें शैल रूप शक्ति के सिवा तीन प्रकार की शक्ति होती है उसे त्रिस्थानिक अनुभाग कहते हैं। जिसमें लता और दारू रूप शक्ति होती है उसे द्विस्थानिक अनुभाग कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, चार कषाय चौकड़ी का उदय, यानी उसमें चार उपाय जाते हैं, बंदा अनंतानुबंधि मुखिया है तो उसको उतना तीव्र कहेंगे हम, ऐसे यहाँ। और जिसमें केवल लता रूप शक्ति होती है उसे एक स्थानिक अनुभाग कहते हैं। उत्कृष्ट अनुभाग शक्ति चतुस्थानिक होती है यह स्पष्ट ही है। ये टॉप मोस्ट है, यानी उसमें नीचे के सब है ही, ऐसा गर्भित लेना। और उससे हीन सब अनुभाग शक्ति अनुत्कृष्ट कहलाती है, इसलिए अनुत्कृष्ट अनुभाग शक्ति को चतुस्थानिक आदि चारों प्रकार का कहा है। चतुस्थानिक में भी बहुत सारे भेद है, उसमें उत्कृष्ट वाला अलग निकाला, तो बाकी जो रिमेनिंग चतुस्थानिक है वो अनुत्कृष्ट में आ जाएंगे। तो अनुत्कृष्ट में किस किस को लेना, चतुस्थानिक भी, त्रिस्थानिक भी, द्विस्थानिक भी और एक स्थानिक भी, यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि एक स्थानिक अनुभाग शक्ति क्षपक श्रेणी के सिवा अन्यत्र नहीं उपलब्ध होती। क्षपक श्रेणी में बहुत सारे वो विधान होते हैं, वहां वो देशघातीकरण वगैरह, पहले द्विस्थानिक होते फिर एक स्थानिक होते, वो जब आएगी क्षपक श्रेणी तो उसका खुलासा भी होगा। तो यहाँ तो इतना ही समझना है, एक स्थानिक कब हो गए, मोहनी इन जनरल की बात चल रही है यहाँ पर, तो एक क्षपक श्रेणी में होगा, तो क्षपक श्रेणी में ही वो जघन्य वाली बात होगी, एक स्थानिक वाली बात। यही कारण है कि यहाँ जिन मार्गणाओं में क्षपक श्रेणी संभव है उनका कथन ओघ के समान जानने की सूचना की है। इतनी बात ख्याल में आई? कुछ प्रश्न है भानुबेन पूछना, वेतिका बेन, ऐसा नहीं समझना कि बाकी सब आप कह रहे हैं तो हम कैसे पूछे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अनुभाग वाली बात सबके लिए नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है। अब आदेश की अपेक्षा, नारकियों में उत्कृष्ट अनुभाग स्थान चतुस्थानिक होता है और अनुत्कृष्ट अनुभाग स्थान द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक अथवा चतुस्थानिक होता है। ये अभी ख्याल में आए, क्योंकि यहाँ एक स्थानिक नहीं होगा क्योंकि यहाँ क्षपणा नहीं होती। इसी प्रकार सब नारकियों, सब तिर्यंचों, मनुष्य पर्याप्त, सामान्य देव, भवनवासी से लेकर सहस्रार स्वर्ग तक के देव,
सोलह स्वर्ग तक के लिए,
क्यों
सहस्रार,
शुक्ल लेश है, कहाँ से,
वो तो आनंद प्राण से,
आनंद प्राण से, इसलिए सहस्रार तक ही लिया, बारहवें तक ही लिए, ऊपर शुक्ल लेश है,
वहाँ चतुस्थानिक नहीं होगा।
हाँ, चतुस्थानिक वहाँ नहीं होगा, उत्कृष्ट वहाँ नहीं पाया जाएगा, और उत्कृष्ट अनुभाग की सत्ता वाले जीव भी वहां नहीं जाएंगे। हमने कल देखा था ना, भोग भूमि में भी नहीं जाएंगे। सब एक इंद्रिय, सब विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय अपर्याप्त, सब पांचों स्थावर का है। आप कहेंगे एक इंद्रिय कैसे बांधते हो गए इतना अनुभव? अरे पंचेंद्रिय में से ले गए हैं ना अभी अनुभव, वो घटने में टाइम लगेगा। वहां पर पंचेंद्रिय अपर्याप्त, सब पांचों स्थावर का है। त्रस अपर्याप्त, औदारिक मिश्र का योगी, वैक्रिक का योगी, वैक्रिक मिश्र का योगी, कार्मण का योगी, तीनों वेद वाले, मति अज्ञानी, श्रुत अज्ञानी, विभंग ज्ञानी, असंयत, शुक्ल बराबर करना, शुक्ल लेशा के सिवा शेष पांचों लेशा वाले, अभव्य, मिथ्या दृष्टि, असंग्य और अनाहारक, हा करना, अनाहारक में जानना चाहिए। अर्थात उनमें उत्कृष्ट अनुभाग चतुस्थानिक होता है। देखो यहाँ कोई समय दृष्टि नहीं लिया है ना? और अनुत्कृष्ट अनुभाग चतुस्थानिक, त्रिस्थानिक अथवा द्विस्थानिक होता है। आनंद स्वर से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग स्थान द्विस्थानिक ही होता है, ही लगाएं। इसी प्रकार यानी ये द्विस्थानिक ही होता है। कहां कहां पर लेना है? अभी आहार का योगी, आहार मिश्र का योगी, अकषायी, परिहार विशुद्धि संयत, यथाख्यात संयत, जहां क्षपणा नहीं होती है परंतु जो सम्य दृष्टि है ऐसे मार्गणाइली है, संयता संयत, वेदक सम्य दृष्टि, उपशम सम्य दृष्टि, सासादन सम्य दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टियों में जानना चाहिए। सासादन को भी लिया और सम्यक मिथ्या दृष्टि को भी लिया। अर्थात उनमें उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग स्थान द्विस्थानिक ही होता है। उनमें उत्कृष्ट, सबसे उत्कृष्ट नहीं, क्या कहा? जो अभी आहारक का योग की बात करेंगे, आपका प्रश्न है इसके उत्कृष्ट क्यों कहा, इनमें तो उत्कृष्ट नहीं होता, तो ओग की अपेक्षा उत्कृष्ट को यहाँ उत्कृष्ट नहीं कहते। आहारक का योगियों में जो पॉसिबल उत्कृष्ट है वो कितना होगा? द्विस्थानिक ही होगा। आहारक का योगियों में जो अनुत्कृष्ट है वो एक स्थानीय होगा क्या? नहीं, वो भी द्विस्थानिक ही होगा। द्विस्थानिक की जो रेंज है उसमें पॉसिबल। ये सभी लिए ना, इसे वेदक लिए, उपशम लिए, क्षायिक को नहीं लिया है क्योंकि वो क्षायिक तो क्षपक श्रेणी में भी होता है, तो क्षायिक सम्यक दृष्टियों में तो हम द्विस्थानिक वाले भी कहेंगे, एक स्थानिक वाले भी कहेंगे। ख्याल आई ना बात? तो यहाँ ऐसी मार्गणाएं ली, सम्यक दृष्टि तो है पर जिनमें क्षपक श्रेणी नहीं है, तो उनमें पॉसिबल उत्कृष्ट उसको उत्कृष्ट कहते हैं। जैसे अभी याद करो, जब हम निषेकों की बात करते थे, किसी मार्गणा में उत्कृष्ट के देखते थे तो उस मार्गणा के योग्य उत्कृष्ट को उत्कृष्ट कहते थे। ऐसे यहां समझना, उस मार्गणा में जितना उत्कृष्ट अनुभाग होगा वो कितना होगा? तो कहते द्विस्थानिक। देखो संयता संयत से द्विस्थानिक लिया है, पांचवे गुण स्थान से द्विस्थानिक होता है अनुभाग।
तो सामायिक छेदों पर स्थापना में एक स्थानिक नहीं हो सकता, आपने बताया पहले।
एक स्थानिक होगा क्षपक श्रेणी में होगा, तो सामायिक छेदों स्थापना में द्विस्थानिक भी होगा, एक स्थानिक भी होगा, क्योंकि वहां दोनों पॉसिबल है ना। जब तक सामायिक छेदों पर स्थापना है और श्रेणी नहीं चढ़ता है तो द्विस्थानिक कहेंगे। तो यहाँ परिहार विशुद्धि वाले को लिया, और परिहार विशुद्धि की बात छोड़ो, अकषाय को ने ग्यारहवें गुणस्थान वाले को लिया क्योंकि वहां सत्ता है, फिर भी द्विस्थानिक है, अनुभाग है वहां पर, मेरे प्रकृति है तो द्विस्थानिक है। वो एक स्थानिक कभी बनेगी? चपक श्रेणी में नवयुग्म स्थान में। अब अपगत वेदी जीवों में, अपगत वेदियों में जो उत्कृष्ट कहना है, अपगत वेदी में जो उत्कृष्ट पॉसिबल है, अब अपगत वेदी में जो उत्कृष्ट है वो द्विस्थानिक होता है, क्योंकि अपगत वेदियों में उत्कृष्ट कहाँ पाया जाएगा, उपशम श्रेणी में, और अनुत्कृष्ट कैसा होगा, द्विस्थानिक भी और एक स्थानिक भी। जब उत्कृष्ट कहते तो उनके ही योग्य उत्कृष्ट समझना, अभी ख्याल में आई नहीं बात। इसी प्रकार अभिनिबोधिक ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनोपर्य ज्ञानी, देखो ये जो मार्गणाएं हैं उनमें जब तक शपक श्रेणी पर नहीं चढ़ते तब तक भी वो द्विस्थानिक होगा और शपक श्रेणी में एक स्थानिक होगा। संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, सूक्ष्म सांप्राय संयत, इसमें दोनों पॉसिबल है ना, उत्कृष्ट भी द्विस्थानिक होगा, अनुत्कृष्ट द्विस्थानिक और एक स्थानिक होगा। अवधि दर्शनी, शुक्ल लेशा वाले, शुक्ल करना, हाँ हर जगह शुल्क हुआ है ना, सामान्य क्या शुक्ल लेशा वाले, सामान्य समय दृष्टि, सभी समय दृष्टियों के लिए घटित होता है द्विस्थानिक, सामान्य से सामान्य है ना, तो इसमें जो जो घटित होता है वो सब सामान्य में आ जाएगा। सभी समय दृष्टियों में द्विस्थानिक ही होता है ऐसा मत लगाना, क्योंकि यहाँ पांचों गुणस्थान वालों से लिया है तो ये सारे समय दृष्टि है, सामान्य में आ जाएंगे। सामान्य में वेदक भी आए, उपशम भी आए, क्षायिक भी आए, वो सामान्य कहलाता है। और क्षायिक समय दृष्टियों में जानना चाहिए, क्षायिक समय दृष्टि जब तक शपक श्रेणी में नहीं गए है तब तक उनका द्विस्थानिक है, जब एक स्थानिक हो जाएगा जगन्य तो एक स्थानिक भी होगा वहाँ।
तो सामान्य समय दृष्टि तो चौथे गुणस्थान से लेना पड़ेगा ना,
जहाँ जो पॉसिबल है वो सब लेना, यानी चौथे में द्विस्थानिक ही होता है ऐसा नहीं यहाँ कहा, फिर भी सम्यक दृष्टि है ना तो द्विस्थानिक कह दिया है। यहाँ तो मार्गणा में हम संयम की अपेक्षा संयमा संयम को,
तो चौथे गुणस्थान में
द्विस्थानिक होगा,
उसको अशुभ लेशिया भी होगी तो उसकी अपेक्षा उसका चार स्थानीय हो सकता है।
यहाँ सत्ता की बात है और उसके कितने कषाय चौकड़ी है, तीन कषाय चौकड़ी भी है जिम्मा है ना, और अनुभाग जो पहले का अनुभाग था वो तो वैसा तो नहीं रहा है। विशेषार्थ ये पढ़ा क्या मैंने, नहीं अर्थात ऊपर की दूसरी ने, अर्थात उनमें मोहनीय कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग स्थान द्विस्थानिक होता है, वहां संयता संयत लिया, संयत इसलिए नहीं लिया क्यों, तो संयत ने पहले से चार से गुणस्थान तक सभी संयत ही कहला, असंयत कहलाते हैं, असंयत मुझे कहना था। क्या कहते हैं ये, अर्थात उनमें मोहनीय कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग द्विस्थानिक होता है और अनुत्कृष्ट अनुभाग द्विस्थानिक अथवा एक स्थानिक होता है, यानी सम्यक दृष्टियों में भी द्विस्थानिक ही लेना, क्योंकि अभिनिबोधिक वगैरह सभी लिए थे ना, उसमें भी द्विस्थानिक कहे है लिए ना, अभिनिबोधिक ज्ञानी कहे, वेदक समय दृष्टि कहे, औपशमिक समय दृष्टि कहे, सब में द्विस्थानिक लिया। विशेषार्थ, आदेश से प्ररूपना करते समय यहाँ निर्दिष्ट सब मार्गणाओं को तीन भागों में विभक्त कर दिया है। प्रथम प्रकार में वे मार्गणाएं आती है जिनमें ओव उत्कृष्ट अनुभाग बंध संभव है, ओव से जो पॉसिबल है वो जिनमें संभव है ऐसी मार्गणाएं ले, या उसका घात किए बिना जिनमें ऐसे जीवों की उत्पत्ति संभव है। अभी ओव से उत्कृष्ट अनुभाग किसके होगा, संघ पंचेंद्रिय पर्याप्त के होगा, अब वो अनुभाग का घात किए बिना अन्य मार्गणाओं में उत्पन्न होता है तो वहां भी अनुभाग सत्व उत्कृष्ट पाया जाएगा, तो वहां भी वो कहेंगे उनके भी उत्कृष्ट अनुभाग सत्व होता है। दूसरे प्रकार में ये तो एक हो गई कि जिसमें ओग वाला उत्कृष्ट अनुभाग संभव है, ओग वाला उत्कृष्ट अनुभाग। दूसरे प्रकार में वे मार्गणा आती है जिनमें क्षपक श्रेणी तो संभव नहीं, पर अंतरंग विशुद्धि के कारण न तो द्विस्थानिक अनुभाग से ऊपर के या नीचे के अनुभाग बंदई होता है। क्या कहते हैं अभी ऐसी मार्गनाएं ली कि अंतरंग विशुद्धि है, सम्यक दृष्टि है, अंतरंग विशुद्धि है। यहाँ संयमी भी लिए ना, कितने पर्याय विशुद्धि लिए, आरक वाले लिए, तो इतनी तो विशुद्धि है अंतरंग में कि न तो द्विस्थानिक अनुभाग से ऊपर का बंद हो रहा है, उनके त्रिस्थानिक या चतुस्थानिक बंद हो ही नहीं रहा, और नीचे के अनुभाग का बंद भी नहीं होता है। एक स्थानिक बंद नहीं होता, एक स्थानिक बंद तो जाके वो ऊपर क्षपक श्रेणी में हो, और न इससे आगे के या नीचे के अनुभाग की सत्ता ही रहती है। सत्ता में से भी वो त्रिस्थानिक चतुस्थानिक चले गए और बंद भी उनका नहीं हुआ। समय दृष्टि हुआ है तो अभी द्विस्थानिक ही बंद होगा और सत्ता वाला भी द्विस्थानिक ही हो गया है। तथा तीसरे प्रकार में वे मार्गणाएं आती है जिनमें परिणामों की विशुद्धि के कारण द्विस्थानिक अनुभाग से आगे के अनुभाग का न तो बंद ही होता है और न सत्ता ही रहती है, परंतु इन मार्गणाओं में क्षपक श्रेणी की प्राप्ति संभव होने से दूसरे भाग में विशुद्धि तो है, बंद भी त्रि या चतु नहीं हो रहा है, एक स्थानिक भी नहीं हो रहा, परंतु वहां क्षपक श्रेणी नहीं पॉसिबल। अब तीसरा ग्रुप ऐसा हुआ है मार्गणा में, तीसरे प्रकार में, कि विशुद्धि के कारण द्विस्थानिक अनुभाग के आगे के अनुभाग का नित्री या चतुष का बंद भी नहीं होता है और न ही सत्ता रहती है, परंतु इन मार्गणाओं में क्षपक श्रेणी की प्राप्ति संभव होने से यहाँ एक स्थानिक अनुभाग भी बन जाता है। वो कौन सी मार्गणा है? उन मार्गणाओं का नाम निर्देश मूल में किया ही है। इस प्रकार उत्कृष्ट स्थान संज्ञा समाप्त हुई। उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट ऐसे दो ही लिए उसमें, चार एक साथ नहीं लेते। उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य जघन्य चारों को एक साथ नहीं कहना। उत्कृष्ट जो उत्कृष्ट नहीं वो अनुत्कृष्ट, अब कहेंगे जघन्य, और जो जघन्य नहीं वो अजघन्य। अब जघन्य स्थान संज्ञा का प्रकरण है। निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। ओघ की अपेक्षा मुनि कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति एक स्थानिक होती है। ये सबसे जघन्य में जो जघन्य है, एक स्थानिक का भी रेंज बहुत सारी होगी, उन सब में जो मिनिमम पॉसिबल है उसको जघन्य कहेंगे, और अजघन्य अनुभाग विभक्ति एक स्थानिक, जो जघन्य को छोड़कर जो ऊपर के एक स्थानिक है वे एक स्थानिक वाले भी है, द्विस्थानिक त्रिस्थानिक अथवा चतुस्थानिक होती है। तो ये जो कथन है कि जघन्य एक स्थानिक जिसमें पॉसिबल है और अजघन्य चारों ही है, एक द्वि त्रि और चतु, ये कहाँ कहाँ होगी? तो मनुष्यों में और जहाँ क्षपक श्रेणी है उस सब में ये घटित करेंगे। इसी प्रकार सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्तक, मनुष्यनी, पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय पर्याप्तक, त्रस, त्रस पर्याप्तक, पांचों मनोयोगी, पांच वचन योगी, काय योगी, औदारिक काय योगी, चारों कषाय वाले, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, भव्य, संगी और आहारक में जानना चाहिए। जब तक कषाय है, अभी चारों कषाय वाले लिए ना, जब कषाय है और उनमें वो संग्रह कृष्टि वगैरह चलती है बात, तभी की बात है ये, एक स्थानिक हो जाता है। विशेषात एक स्थानिक में भी जो सबसे हीन अनुभाग शक्ति होती है वह जघन्य अनुभाग शक्ति है, और इसके सिवा शेष सब अजघन्य अनुभाग शक्ति है। इनमें से मोनी की जघन्य अनुभाग शक्ति क्षपक सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय में होती है। अब ये और जघन्य में और ये विशेषता हो जाएगी, है तो एक स्थानिक, परंतु एक स्थानिक में भी मिनिमम पॉसिबल कौन है, सूक्ष्म सांप्राय का अंतिम समय, वो जो अंतिम निषेक खिल रहा है उसमें जघन्य में जघन्य अनुभाग है। इसके सिवा अन्यत्र अजघन्य होती है। इसके सिवा यानी नवे में भी अपगत वेद होने पर भी उसको कहेंगे अजघन्य। ओ से तो यह संभव है ही, पर जिन मार्गणाओं में मिथ्यात्वादी क्षपक सूक्ष्म सांप्राय तक गुणस्थान संभव है, इन्हें पहले से 12 जिसमें गुणस्थान संभव है उनमें भी यह व्यवस्था बन जाती है। व्यवस्था ने व्यवस्था मिथ्या दृष्टि को भी इसमें लेना है, क्योंकि कथन क्या कहा था, अजघन्य में
एक दो
बाकी सब एक स्थानिक द्विस्थानिक त्रिस्थानिक चतुर्थानिक बताए, इसलिए वो पहले गुणस्थान तक घटित कर देना सब में। अतः मूल में निर्दिष्ट मार्गणाओं का कथन ओग के समान जानने की सूचना की है, यानी ऐसी मार्गणा चाहिए जिनमें क्षपक श्रेणी भी संभव है, सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान ने जिन मार्गणाओं में सभी गुणस्थान पॉसिबल ऐसे लेना है, यानी 1 से 10 तक क्षपक सूक्ष्म सांप्राय तक। अब अकषाय लेंगे तो 11वें वाले को इसमें नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें वो चारों ही बातें घटित नहीं हो रही है। हमें अजघन्य में क्या क्या लेना है, सब एक स्थानिक द्विस्थानिक त्रिस्थानिक और चतुस्थानिक। आदेश की अपेक्षा नारकियों में मोनीय कर्म का जघन्य अनुभाग स्थान द्विस्थान, अभी नारकियों में पॉसिबल जघन्य लेना। जब ओग की अपेक्षा हमने जघन्य और अजघन्य की बातें की थी, हाँ, तो उसमें वो जघन्य ओग वाला जघन्य पॉसिबल नहीं था, परंतु नारकियों में पॉसिबल जघन्य तो यहाँ हो सकता है ना। तो नारकियों में मोनीय कर्म का जघन्य अनुभाग स्थान द्विस्थानिक होता है, क्योंकि यहाँ भी समय दृष्टि है ना, और अजघन्य अनुभाग स्थान द्विस्थानिक, क्योंकि द्विस्थानिक में भी मिनिमम पॉसिबल को छोड़कर अन्य उसके होगी ना, तो द्विस्थानिक भी हो गए, त्रिस्थानिक अथवा चतुस्थानिक होता है। इसी प्रकार सब नारके सब तिरियंश मनुष्य अपर्याप्त सामान्य देव भवनवासी से लेकर सहस्रार स्वर्ग तक के देव, क्योंकि ये दोनों ही घटित करना है, जघन्य में द्विस्थानिक और अजघन्य में द्वित्रि और चतुस्थानिक, ये जहां जहां घटित होगा, सब एकेंद्रिय सब विकलेंद्रिय पंचेंद्रिय अपर्याप्त सब पांचों स्थावर का है, त्रस अपर्याप्त औदारिक मिश्र का योगी वैकृत का योगी वैकृत मिश्र का योगी कार्मण का योगी तीनों वेदी, यानी जब तक वेद का उदय है उसकी बात चल रही है। मति अज्ञानी श्रुत ज्ञानी विभंग ज्ञानी असंयत शुक्ल करना, शुक्ल लेशा के सिवा शेष पांचों लेशा वाले, यानी जिनमें जिनमें ये कथन होता है ना कि जघन्य द्विस्थानिक है और अजघन्य द्वित्रि और चतुस्थानिक है, ये जिनमें जिनमें घटित होता है ऐसे सब मार्गणाएं लिए। अभव्य मिथ्या दृष्टि असंग और अनाहारक हारक करना, ये जानना चाहिए। आनंद स्वर्ग से लेकर सर्वार सिद्धि पर्यंत जघन्य और अजघन्य दोनों ही द्विस्थानिक होती है, ये डिफरेंस ख्याल में आया। नरकादि अभी जो मार्गणाएं देखी थी उसमें जघन्य तो द्विस्थानिक है और अजघन्य द्वि त्रिया चतुस्थानिक है। आनत से लेकर ऊपर तक जघन्य भी द्विस्थानिक है और अजघन्य भी द्विस्थानिक है। इस हाँ शुक्ल लेशा के कारण। अभी ग्रेवेक आदि में मिथ्या दृष्टि भी है, फिर भी वहां त्रि चतुस्थानिक वाला मिथ्या तो वो नहीं होगा। सत्ता में भी, सत्ता की बात चल रही है, उदय में तो नहीं होगा, सत्ता में होगा तो ही उदय रूप होगा ना। इसी प्रकार आहारक कायोगी, आहारक मिश्र कायोगी, ये जो नारके के समान नहीं लिया, ये शुक्ल लेशा के समान लिया है, क्योंकि अभी आहारक आहारक मिश्र ये सारे सम्यक दृष्टि जीव है। तो उनका जघन्य भी द्विस्थानिक और अजघन्य भी द्विस्थानिक है, उसमें त्रि चतु वाले नहीं होंगे।
सानत प्राणत में जिसने सत्ता की अपेक्षा भी जो द्विस्थानिक किया है वो ही ऊपर के स्वर्ग में जाएगा। आनत प्राणत
जिसके अधिक की सत्ता होगी वो आनत से ऊपर वो जाएगा ही नहीं। देखो कैसे कैसे नियम है ना, सत्ता में भी नहीं है। अभी नया बंध तो होगा ही नहीं उत्कृष्ट, क्योंकि नया बंध होता तो उसको सत्ता में गिनते। जैसे वहां हमने देखा था निषेक में स्थिति भी कम होती है, वैसे अनुभाग भी वहां जाने वाले के कम हो गए सत्ता में ही।
तो मिथ्या दृष्टि को भी विसादीय सत्ता हो सकती है, क्योंकि
होती है ना।
हाँ।
ये सब एक इंद्रियों को भी लिया इसमें। और यहाँ जो हमने देखे शुक्ल लेशा वाले द्विस्थानिक ही होती है, जघन्य हो या अजघन्य हो, यानी उनमें उत्कृष्ट वाला वो चतुस्थानिक वाला होगा ही नहीं, सत्ता में ही नहीं होगा। तो कहते इसी प्रकार आहारक का योगी, आहारक मिश्र का योगी, अकषायी, परिहार विशुद्धि संयत, यथाख्यात संयत, संयता संयत, वेदक समय दृष्टि, उपशम समय दृष्टि, सासाधन समय दृष्टि, क्योंकि यह अनुभाग सासाधन कहाँ से आया है, उपशम में से तो आया है ना, तो वहीं पर उसकी द्विस्थानिक होगी, यहाँ तो अधिक होने का कोई सवाल नहीं है उसका। सम्यक मिथ्या दृष्टि को भी लिया जानना चाहिए। अपगत वेदी जीवों में मोनीय कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति एक स्थानिक होती है, वो क्षपक श्रेणी की अपेक्षा, और अजघन्य अनुभाग विभक्ति एक स्थानिक होती है और द्विस्थानिक होती है। उपशम श्रेणी में तो द्विस्थानिक पाई जाएगी अपगत वेदी अवस्था में भी। इसी प्रकार अभिनिबोधिक ज्ञानी, यानी जघन्य एक स्थानिक और अजघन्य एक और द्विस्थानिक, श्रुत ज्ञानी, अवधिक ज्ञानी, मनपरे ज्ञानी, संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, सूक्ष्म सांप्राय संयत, अवधि दर्शनी, शुक्ल लेशा वाले, शुक्ल करना बराबर, सम्यक दृष्टि और क्षायिक सम्य दृष्टियों में जानना चाहिए, अर्थात इनमें मोनी कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति एक स्थानिक होती है और अजघन्य अनुभाग विभक्ति एक स्थानिक और द्विस्थानिक होती है, जिनमें जिनमें क्षपणा सब पॉसिबल है ऐसे ये स्थान लिए हैं। इस प्रकार जघन्य स्थान संज्ञा समाप्त तो हुई है। यहीं रुकते अभी हम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत होलू अश्विन
नमो अरियंतानम नमो चित्तानम नमो।